अब इससे आगे वाला हिस्सा जो है ना, इसका ताल्लुक ख़ास तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ है। कैसे उनके साथ मामला हुआ, कैसे लोगों ने आपकी शहादत की खबर सुनकर अपने आप को पीछे डाल दिया, तो आयात को साथ लेकर इंशाअल्लाह ताला हम अपने लिए मज़ीद रहनुमाई को इसमें से लेंगे। आयत 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद तो बस एक रसूल है। कद खलत मिन कबलिहिर रसुल, तहकीक गुजर गए उनसे पहले कई रसूल। अफ इम माता, क्या पस अगर वो मर गया, औ कुतिला या मारा गया। इन कलब तुम अला आकाबिकुम, क्या फिर जाओगे तुम अपनी एड़ियों पर, मुराद जाए के दीन छोड़ दोगे। चलो ठीक है। वमैयन कलिब अला अकिबई ही, और जो कोई फिर जाएगा अपनी दोनों एड़ियों पर, फलई यदुरल्लाह शैया, तो वो हरगिज़ अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। यानी वो अपना नुकसान करेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वसयज़िल्लाहुश्शाकिरीन, और अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बहुत कुछ देगा, यानी असल जज़ा उन्हीं को देगा। ये आयत और इससे आगे की कुछ आयत जो हैं, इनको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि हालात क्या थे। जैसा कि शुरू में थोड़ा सा तذکرہ हुआ था इस बात का कि जब मैदान उहद में मुसलमान वक्ती तौर पे फतह याब हो चुके थे, साथियों ने दर्रा छोड़ दिया, बग़ैर बताए बग़ैर इत्तला के अपनी जगह खाली कर दी। दुश्मन ने उससे फ़ायदा उठाया। खालिद बिन वलीद ने अपने साथ एक लश्कर जमा किया और पीछे से आके हमला कर दिया। अब ये एक नागहानी किस्म का हमला था, खौफ और हिरास फैला। एक शख्स था इब्ने कुमा, काफ से कुमा, जैसे कौमे का लफ्ज़ है ना, उसी को इकट्ठा कर ले, तो इब्ने कुमा था। इसने पत्थर मारा, और वो पत्थर जो था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक पे लगा, जिसकी वजह से आपका जो दांत था वो ज़ख्मी हो गया। इसी तरह हौद की कड़ियाँ जो थी अल्लाह के नबी के गालों में चली गई, खून बहने लगा। इसके साथ ये अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। बस इस खबर के फैलने की देर थी कि मुसलमानों के औसान जो थे वो ख़ता हो गए, यानी भगदड़ मच गई। और वो साथी जो अभी तक एक ही महाज पे लड़ रहे थे, उनके मुख्तलिफ गिरोह हो गए। वही बात पीछे वाली के वाली युमख्खिस अला वाली कैफियत हो रही है। कुछ ने क्या किया, कुछ कमज़ोर ईमान के थे। देखिए ईमान के दर्जे हैं, जैसे एक आप स्ट्रॉन्ग चीज़ लेते हैं, एक वीक होती है ना, इसी तरह मुसलमानों में हर दर्जे के लोग हमेशा रहेंगे और रहे थे। कुछ कमज़ोर थे, क्या कहने लगे, काश अब्दुल्ला बिन अबई हमारे लिए अबू सुफियान से अमान तलब कर ले, यानी गिव अप कर दिया, जंग को ड्रॉ कर रहे हैं कि चलो दुश्मनों का जो सरदार है अबू सुफियान, उससे जाके अमान ले लेते हैं। गोया कि ये किस्म की शिकस्त को तस्लीम करना था। ठीक है, बाज़ वहाँ मुनाफिक भी थे, उन्होंने इस मौके पे प्रोपेगंडा ये शुरू कर दिया कि देखो अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते तो शहीद कैसे होते, क्योंकि लोगों का हमेशा तसव्वुर यही होता है कि चढ़ते सूरज के पुजारी। जब कश्ती डूबती है ना, तो लोग उससे उतरना शुरू हो जाते हैं, और जब तैरती है तो लोग उसके अंदर अपना नाम डालने वाले बन जाते हैं। इन मुनाफिकों ने ये प्रोपेगंडे किए कि नऊज़ु बिल्लाह, ना तो अल्लाह के नबी सच्चे थे तभी तो मर गए, और दीन सच्चा नहीं है तो चलो आओ वापस पिछले दीन की तरफ चल जाते हैं। एक तीसरा भी गिरोह था जो बड़े जानबाज थे, यानी ये थे वो जो किसी भी गिरोह की क्रीम होते हैं, हर हाल में डटने वाले। वो इस मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रहे। इन्हीं में से एक थे अनस बिन नज़र। इन्होंने जब देखा कि लोगों के हौसले टूट रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर पड़ा है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने ललकारा, पुकारा, कहने लगे आओ जिस मकसद के लिए हमारे आका ने जान दे दी, हम भी फिर उसी के ऊपर अपने सर कुर्बान कर दें। हमने क्या करना है अब जी के, अगर हमारा नबी नहीं रहा। आप सोचें कि हम तो अल्लाह के नबी सल्लम की मौत की खबर को इतना नहीं समझ सकते, लेकिन आप मदीना के अंदर उन लोगों के अंदर अल्लाह के नबी की मौजूदगी, आपकी मोहब्बत को देखें, तो आपको अनस ही का एक कॉल मिलेगा कि वो कहते हैं कि मदीना की तारीख में सबसे बड़ी खुशी का दिन वो था कि जब अल्लाह के नबी सल्लम मदीना में हिजरत करके आए। तलाउ बद्रु अलैना, अल्लाह ने बद्र कामिल हमारे शहर में भेज दिया कि जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी हो गई। और कहते हैं कि मदीना की गलियों में तारीख तरीन रात वो थी कि जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। یہی انس ہے، یہ للکار کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے نبی کے بعد جینے کا کیا مزہ ہوگا، یعنی آپ شہید ہوئے ہیں تو ہم بھی اسی شہادت کی تمنا کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں پھر انہوں نے اتنی بے دردی سے لڑائی کی کہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد کچھ لوگ جو بالکل نیو مسلم تھے، ہر دور کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، بہت سارے لوگ میدان جنگ میں اسلام قبول کرتے تھے. جب مسلمانوں کی بہادری دیکھتے تھے، ان کا ڈسپلن دیکھتے تھے، سرحدوں پہ ان کا اس طرح سے سما و بسر کے ساتھ کھڑے ہونا دیکھتے تھے تو مسلمان ہوتے تھے. اب سوچیے نا کہ ایک نیا بچہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں دین کا، مثال ہے کنورٹی، کوئی آج شہادہ کر رہا ہے، اب اس کو وہ تو نہیں ساری باتیں پتہ جو ہونی چاہیے دین کی. تو ایسے کمزور جو لوگ تھے یہ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اب انہی کو خاطب کر رہے ہیں. یہاں یہ جو آیتیں اور اس سے اگلی آیتیں چل رہی ہیں، اس کو سنتے وقت صحابہ کرام کو ذہن میں نہ رکھیے گا کہ جو شروع سے اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام کے راستے میں قربانیاں دے رہے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ تھے جو بالکل ابھی دین میں نومولود تھے، ابھی ان کو پوری طرح دین ملا نہیں، ابھی علم نہیں تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی خبر تمہارے تک پہنچی ہے نا، تو کیا ہوا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد تو کچھ بھی نہیں سوائے ایک رسول کے. کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ صرف قاصد ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آتے، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں. رسول کون ہوتا ہے؟ آج کے دور میں آپ اس کو ایسے ہی کہہ لیں جیسے پوسٹ مین آپ کی پوسٹ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. کہیں پڑھ کے سنانے کی ضرورت پڑتی ہوگی تو پڑھ دیتے ہوں گے، کہیں کچھ اس کی ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی تو ڈیٹیلز دے دیتے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی پوسٹ مین وہاں کھڑا نہیں رہتا. اب یہ تو ایک صرف مثال تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں کو دینے آئے تھے، بس اب دے دیا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُل، کوئی پہلا رسول نہیں تھا، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے اور آئے اور آ کے چلے گئے، بس ٹھیک ہے، چلو چلے گئے، آگے رسول تھے وہ ہو گئے، انہوں نے اپنا کام کیا، ان کا کام ختم ہوا، اب دنیا سے چلے گئے. اب کیا ہے؟ کیا یہ نبی اَفَإِمَّا او قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ، اگر یہ مر جائے، دو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں، نمبر ایک ماتا، ماتا یا میتو یا موتن یعنی خود مرنا، طبعی موت مرنا، اور او قتیلا مارے جانا یعنی کسی کو کل کر دینا. کل کے معنوں میں کسی انسان کے مرنے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، یا طبعی طور پہ مرتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کسی حادثے کا، یا پھر ویسے ہی عمر پوری ہو گئی، اور دوسری صورت ہے کہ کوئی کسی ذریعے سے اس کو مار دیتا ہے. گویا کہ اللہ کے نبی کے لیے دونوں پاسبلٹیز موجود تھیں. آج کے دور میں مسلمانوں میں کوئی ایسا ایک گروہ پیدا ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، اور وہ یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ نبی کے بارے میں یہ لفظ کہنا کہ اللہ کا نبی فوت ہو گیا یہ آپ کی توہین ہے، گستاحی ہے. تو معذرت کے ساتھ پھر یہ گستاحی تو قرآن کر رہا ہے. کتنے کلیئر لفظوں میں اللہ کے نبی کی موت کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، مریں گے بھی، مارے بھی جا سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کو یہاں ایک اور بڑی دلچسپ قسم کی غلطی لگی، اور اللہ عقائد کی اصلاح کر دے. یہ جو لفظ ہے نا قد خلت من قبل ہے رسول، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ آپ سے پہلے اور بھی رسول گزر گئے اور فوت ہو گئے، تو گویا کہ پھر اب عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. پیچھے بات تفصیل سے ہو چکی ہے نا، اپنے آپ کو مسلمانوں ہی کی صفوں میں شامل کرنے والا ہے گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے، اور ان کے خیال میں عیسیٰ اب دوبارہ نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی مسیح کی صورت میں جو بھی حضرت ان کے لیڈر ہیں وہ آ چکے اور وہ بھی فوت ہو چکے. وہ ان آیتوں کو کوٹ کر کے کہتے ہیں دیکھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی سے پہلے جو باقی رسول آئے وہ سب فوت ہو گئے، تو اب تو عیسیٰ بھی فوت ہو چکے ہیں، اس لیے واپس آنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ذرا لفظ خلط پہ غور کر لیجئے. خلط کا لفظ کیا ہے؟ خالی ہونا، خلا سے خلاؤ، پیچھے پڑھ چکے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں خلا کا آیا ہے، خالی ہونا کا لفظ آتا ہے نا، کہ وہ جب خالی ہوتے ہیں. اگر یہاں اور صرف اس ایک لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے، کیسے؟ اگر یہاں یہ کلام ہوتا نا کہ قد ماتت من قبل ہے رسول، آیت کیسے ہوتی؟ وما محمد اللہ رسول قد ماتت من قبل ہے رسول، تو معنی کیا تھا کہ اے نبی آپ رسول ہیں اور آپ سے پہلے سارے رسول وفات پا چکے ہیں، یہ تو نہیں ہوا. और हो सकता था अगर हम आम टेक्स्ट में देखते हैं कि सारे नबी फौत हुए, लेकिन चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत नहीं हुए, सिर्फ उनके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ मातत की जगह खलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्योंकि खलत का लफ्ज़ क्या होता है, खला यखलू का मानी होता है अलग होना, अलहता होना, ना कि मर जाना। क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, वइज़ा खलऊ अद्दू अलैकुम अलअनामिला, यहूद जब अकेले होते हैं तो आप पर गुस्से से उंगलियाँ काटते हैं। तो वहाँ अगर आप खलाऊ का मानी मौत करेंगे तो क्या मतलब है कि जब वो मर जाते हैं तो फिर आप पे गुस्से से उंगलियाँ काटते हैं। तो ये एक साइड पॉइंट था कि देखिए कि बाज़ लोग सही कुरान पाक के अंदर अपने बातिल नज़रियात को कैसे तकवीत देते हैं कि उसे ऐसे लगता है कि बातिल पे सच का गुमान होने लगता है। अगर हम इतनी बारीकी से इन लफ्ज़ों को ना देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हम कुरान के लफ्ज़ों ही के इर्द गिर्द खेल रहे होते हैं, इतना वक्त ही नहीं अब हमारे पास होता है इसमें कि हम इसमें से कोई इधर उधर की बातें करें। तो इस लफ्ज़ कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फौत ना होना भी साबित हो गया कि अलग हो गए, आसमानों पे चले गए लेकिन फौत नहीं हुए। बहरहाल अब क्या कहा कि नबी की वफ़ात की खबर सुन के तुम फिरते हो, वमैयन क़लिब अला अक़िबई ही, और जो अपनी एड़ियों से फिरे, अक़िबई अक़िबैन से दूसरे पारे के आगाज़ में आप लोग सुन चुके हैं इसके बारे में। तो क्या पता चला कि जो अपनी एड़ियों पे फिरता है, देखिए यहाँ बहुत ही बारीक नुक्ता है, इस पे भी गौर करवाऊँगी इंशाल्लाह, आप तवज्जो से देखिएगा कि वमैयन क़लिब अला अक़िबे ही, और जो अपनी एड़ियों से फिर जाए, ये मुहावरा है, मुराद क्या है, दीन से फिरना। फलई यदुर्रल्लाह शैया, वो अल्लाह का हरगिज़ कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। अच्छा अब आप देखिए कि यहाँ सहाबा कराम के मैदान जंग से फिरने की बात है, ठीक है ना। जो लोग मैदान उहद से भाग रहे थे, खुदा न खास्ता वो दीन से नहीं भागे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मैदान जंग से उनके भागने को भी दीन से भागने से क्यों ताबीर किया, इसलिए कि जो लोग आला दर्जों पे फायज़ होते हैं ना, वो छोटी सी भी गलती करते हैं ना तो वो हाईलाइट हो जाती है। सहाबा कराम का जो मुकाम और मर्तबा था, मैदाने जंग से उनका भागना गोया के दीन से भागना हुआ, क्यों? इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक कि जब मुसलमानों को मैदाने जंग से कोई भागता देखेगा तो जितने थोड़े मुसलमान थे उनको भी मार के इस्लाम का ख़त्म हो जाएगा, कैसे लोग इस्लाम के लिए एक बुरी मिसाल भी बनेंगे और बाकी रहते सहते मुसलमानों की मौत का सबब बनेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि आज भी कबीरा गुनाहों में से है कि कोई मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाए, मतलब खुदा ना हासा कहीं जंग लगी हुई है तो कोई शख्स अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए तो उसने क्या किया, सारे ये सोचेंगे सारे भागेंगे तो इस्लाम नाकाम हो जाएगा ना। इसलिए मैदान जंग से पलटना बहुत बड़ा गुनाह है, कबायर में इसका नाम आता है। और पिछले दौर की जो माएँ होती थी वो अपने बच्चों को ना सिर्फ ये कि मैदान जंग में भेजती थी बल्कि ये नसीहत करती थी के बेटा मैं तुम्हारी जब खबर सुनूं तो तुम्हारे सीने पे गोली हो, पुश्त पे ना हो। क्या मतलब कि सामने है तो तुम मुकाबला करते हुए मरे हो, पुश्त पे होगी तो तुम भाग रहे थे। तो ये वही चीज़ होती है कि जब इस्लाम से लोग थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो दूसरे लोगों को भी इस्लाम से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बयान कर दी, और यही आयत आपने पीछे पढ़ी है, वमई यन कलिब अलाकिबई से मिलती जुलती लफ्ज़ कहाँ थी जी आप, शाबाश, किबले की तब्दीली में, वहाँ पलटने की बात भी थी, यहाँ मुहावरतन वही बात कर दी कि जो जाता है वो जाए, जो पलटता है वो पलटे। फलई यदुरल्लाह शैया, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए कि कोई शख्स अल्लाह की मजबूरी नहीं है। अल्लाह ताला किसी को अपने काम का बना ले, ये उसका एहसान है, ये एक और फजल है जिस पे मज़ीद शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर कोई ये समझ लेना कि मैं नहीं हूँ तो अल्लाह का दीन नहीं है, अल्लाह का नबी दुनिया में नहीं है तो अब दीन की ज़रूरत नहीं रही, सबको ख़त्म कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाँ बल्कि उसका अपना ही नुकसान है। लेकिन वसयज़ल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह कदरदानों को, शुक्रगुजारों को ज़्यादा देगा। वो कौन है जो ऐसी मुश्किल घड़ियों में भी दीन पे जमे रहते हैं, खड़े रहते हैं और इस्लाम की के सिपाही बन जाते हैं। और बाकी रह गई बात की, ये जो भगदड़ मची इससे बहुत सारी बातें पता चल गईं, और वो क्या कि जब इस मौके पे ये आयतें नाजिल हुईं, असल में अल्लाह की ज़ात जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मौत के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। اس آیت کے نزول کے تقریباً 7.5 سال بعد، یعنی 7.5 ایئرس کے بعد حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام کے اوسان خطا ہوئے، حضرت عمر کو اتنا رنج اور صدمہ تھا کہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی، کہا جو شخص یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر اس کا سر قلم کر دے گا. اللہ کے نبی ایسے ہی گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اور پیچھے سے خبر پھیل گئی تھی کہ موسیٰ فوت ہو گئے. پھر اس موقع پہ ابو بکر صدیق نے منبر پہ آ کے کہا کہ جو محمد کو پوچھتا تھا، من کان یعبد محمد فإن محمدًا قد مات، تو وہ جان لے، وہ سمجھ لے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، اور جو من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ پھر جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا. اور جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے، کہتے ہیں کیسے لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے. ان کو پتہ چلا کہ یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے نبی کی زندگی میں ہی ان کی موت کی خبر برپا کر کے لوگوں کو 7.5 سال کے بعد آنے والی چوٹ سہنے کے لیے تیار کر دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے بعد پیچھے نہ پلٹ جانا. کیا پتہ چلا کہ ہمارا دین انسانوں کے ساتھ نہیں چلتا، لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے. کوئی کسی انسان کو دیکھ کے دین کی طرف آتا ہے کہ وہ ہے تو میں ہوں، وہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، تو شوق سے جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوستوں کے لیے آتے ہیں. ایک ایسی جگہ تھی کہ کسی وجہ سے کسی اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے کلاس چھوڑی تو ان کی دوست نے بھی چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ کہنے لگی چونکہ میری اب دوست نہیں آ رہی تو مجھے بھی نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تم چھوڑتے ہو تم محروم رہ جاؤ گے. لہٰذا ان آیات میں ہمت بندھائی گئی، اور اس موقع پہ ایک بہت بڑا فتنہ جھوٹ سکتا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بچا لیا اور فرما دیا کہ بس تم اللہ کے دین پہ قائم رہو. تم نصارہ کی طرح نہیں ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں اتنے کھو گئے کہ انہوں نے اللہ کے اصل دین کو بھی چھوڑ دیا. اور یہاں دیکھیے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ میں شکر گزار بندے کون ہیں؟ جنہوں نے نعمت اسلام کی قدر کی، پہچانا، پھر قدر کی، پھر اس کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیے آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے. اگر کسی وجہ سے ہم اس نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے، تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا. انسان کو کسی کا نقصان نہیں ہوگا، انسان کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے نبی انسان تھے وہ فوت ہوئے، ان کو موت آئی، تم میں سے ہر ایک کو موت آنی ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں مر سکتا کوئی نفس مگر اللہ کے حکم سے، ایک وقت ہے مقرر. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا ثواب چاہے گا ہم اس میں سے دیں گے اس کو. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس میں سے اس کو دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. دونوں آیتیں ختم ہو رہی ہیں شکر والوں پہ. اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں بتا دیا کہ دیکھو موت کا ایک وقت متعین ہے، موت آ کے رہے گی. بزدلی سے زندگی بڑھ نہیں سکتی، اور شجاعت اور دلیری سے زندگی گھٹ نہیں سکتی. پھر جہاد سے منہ پھیرنے سے کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں جاتے، یا اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس میں ان کی جان چلی جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے خالد بن ولید کا ایک قول بہت فائدہ مند ہوگا. بہادر سپاہی تھے، ساری زندگی کفر کے لیے لڑتے رہے، اور بالکل آخر میں فتح مکہ کے قریب ان کو اسلام نصیب ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام کے لیے لڑنا شروع کر دیا. اور جب بستر مرگ پہ تھے تو جسم میں کئی زخم تھے لیکن نہیں مرے، گھر پہ مرے، بستر پہ مرے. اور ان کا قول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہاں ہے موت کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگنے والے، مجھے دیکھیں، ساری زندگی جنگوں میں رہا لیکن آج موت اپنے بستر پہ آ رہی ہے. تو کبھی مت سوچئے گا کہ اگر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو تبھی موت آ جائے گی. چلیے وہ تو میدان جنگ میں جانے کی بات تھی، اور وہاں خود کو پیش کرنے کی بات تھی یا اولادوں کو پیش کرنے کی بات تھی. آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. हम मैदान जंग की तो बात छोड़ें, हम तो अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को थोड़ा सा खालिस करें तो हमें अपने ऊपर रहम आने लगता है, तरस आता है, सेहत ख़राब हो रही है, रंग पीला हो रहा है, एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिलता, अब ज़िंदगी में कोई एक्टिविटीज़ नहीं रही, दूसरे भी तरस खाते हैं, कहते हैं बस अब तुम्हारे चेहरे पे वो फ्रेशनेस नहीं रही। अल्लाह ताला कह रहे हैं गम ना करो, मौत आनी है, वमा कान अली नफ्स अन तमूत इल्ला बिस्मिल्लाह। क्या घर में मौत नहीं आती, बिस्तर पे नहीं आती? किताबों मौजला लिखी हुई बात है, होके रहेगी। इस पर एक बात शायद मैंने आपको पहले सुनाई थी कि एक शख्स था तो उसको बहुत दरिया से डर लगता था। एक मौके पे उसको कश्ती में बैठना पड़ा तो बहुत ही गम खा रहा था कि हाय मैं डूबी ना जाऊँ। तो जो मल्लाह था वो उसको कहने लगा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप को मौत कहाँ आई? तो उसने कहा कश्ती चलाते हुए। अच्छा तुम्हारे दादा को मौत कहाँ आई? कहा वो भी मल्लाह था, उसको भी कश्ती चलाते हुए मौत आई। तो कहने लगा तुम्हें डर नहीं लगता? फिर तुम वहीं बैठ के वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे बाप दादा की मौत का सबब बना। तो वो मल्लाह बड़ा समझदार था, कहने लगा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बाप को कहाँ मौत आई? कहने मेरा बाप तो घर में बिस्तर पे मरा था। कहा अच्छा, ये बताओ तुम्हारा दादा कहाँ मरा था? कहा वो भी घर में बिस्तर पे मरा। तो कहता है तुम्हें रात को बिस्तर पे लेटते हुए डर नहीं लगता कि जिस बिस्तर पे तुम्हारे बाप दादा मर गए तुम भी मर जाओगे? तो याद रखिए वमा खान अली नफ्सन तमूत इल्ला बिस्मिल्लाह। ये थी वो बात जिसके यकीन ने सहाबाए कराम को निडर बना दिया कि दश तो दश सहरा भी ना छोड़े हमने, कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरी मौत जहाँ लिखी है जिस हाल में लिखी है वहीं होगी और मुझे कोई वक्त से पहले मार नहीं सकता। बाकी रह गई बात वमई योरित सवाब बद दुनिया नूती ही मिनहा, जिसको दुनिया के सवाब चाहिए उसको भी हम ही देंगे। यानी ये वही बात है जो पीछे हम पढ़ चुके, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार में, कि जिसको दुनिया चाहिए दुनिया भी तो अल्लाह ही देता है ना। हाँ वमई योरित सवाब अल आखिरती, और जो आखरत का सवाब चाहेगा वो भी हम देंगे। पता क्या चला कि आखरत भी अल्लाह के हाथ में है, उसके सवाब, और दुनिया के भी। जो अल्लाह ताला से जो मांगेगा अल्लाह सुबहाना ताला उसको वही देगा, और इसके अलावा फिर वक्त टल नहीं सकता। यहाँ फिर देखिए कि सहाबा कराम जो माले गनीमत को जमा करने लग गए थे ना, तो ये गलती क्या थी कि अल्लाह के नबी ने जो काम उनको दिया था ना उसको छोड़कर एक दूसरा काम करने लग गए थे। यहाँ एक मुगालता होता है, और वो क्या है कि चूँकि माले गनीमत की बाँट तो हो चुकी थी पहले से ही, साबित गज़वे बदर के बाद वो आयात आ चुकी थी कि माले गनीमत सबको बांटी जाएगी। जो लोग माल जमा कर रहे थे ना उनको भी ये पता था कि ये माल सारा बैतुल माल में जमा होगा और वहाँ से हमें मिलेगा हर एक को अपने हिस्से का, और हम वहाँ से लेंगे। तो बाज़ मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि सहाबे कराम ने जो माल जमा किया था ना वहाँ, वो उनका माल जमा करना इस सोच से नहीं था कि मैं ज़्यादा जमा करूं, बल्कि उन्होंने अब दूसरा काम शुरू कर दिया था। मैं इसकी छोटी सी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई फंक्शन करते हैं ना आप लोग दीन के नाम पे, हर एक की ड्यूटीज़ लगती हैं ना। मसलन आप सब काम कर रहे हैं, कोई रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, कोई खिला रहा है पिला रहा है, कोई सफ़े बना रहा है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की ड्यूटी ये हो कि फंक्शन के ख़त्म होने पर उन्होंने जल्दी से यहाँ से कारपेट रैप करने हैं। अब ये काम तो दीन का ही है ना, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, फंक्शन ख़त्म हो जाए, मेहमान चले जाएं, थोड़ा सा एहसास हो कि काम ख़त्म हो गया, अब इज्जत से मेहमान निकल गए, अब सिर्फ अपने ही घर के लोग हैं या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, फिर वो उठाएं। अब जो लोगों को खुद जाने की जल्दी है या तबीयत में जल्दबाजी है वो देखें, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदी का बात हुई, फंक्शन ख़त्म, तो वो पीछे से कारपेट तय करें, मेहमान सिर्फ पीछे हटे पीछे हटे, जल्दी करना है। ये बड़ी बुरी आदत होती है। इसका इशारा है कि सहाबा कराम ने एक अपॉइंटेड जगह को दर्रे पे खड़े होना, ये भी अल्लाह के नबी का हुक्म था, ये भी दीनी कौज थी, इसको छोड़कर एक दूसरा काम करना शुरू कर दिया जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। ये भी पसंदीदा नहीं है। देखिए काम तो दीन का ही किया ना, लेकिन इस्लाम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है। यकीन करें कि गज़वा ओहद को अगर आप इस तनाजर से पढ़ लेना, आपको फुल टीम मैनेजमेंट का एक कोर्स हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली आयतें आएंगी, मुमकिन हुआ वादा नहीं, लेकिन जहाँ ये पूरा किस्सा हो जाएगा तो आपको एक ओवरऑल इस पे ओहद के अंदर से जो लेसन है उस पे थोड़ी सी पॉइंट हाईलाइट करवा दूंगी चीज़ें, कि दुनिया में ज़िंदगी में काम करने के क्या तरीके होते हैं। दीन का भी काम करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। सहाबे कराम के कंधों पर 7 साल के बाद एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला था। आज तो वो गलती करके आते थे, अल्लाह का नबी उनको बता देता था ये ठीक नहीं तुमने किया, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो खुद भी खुशी खुशी आके बताते थे, लेकिन अल्लाह के नबी को दुनिया से जाना था। वमा मुहम्मदन इल्ला रसूल, उसके बाद क्या करोगे, या यही भगदड़े मचाओगे, क्या तुम इस छोटी छोटी बात पे इख्तलाफात में पड़ जाओगे, इतना इख्तलाफ हो जाएगा, कोई कहता है माल जमा कर लो, कोई कहता है ये कर लो वो कर लो। तो असल में ये तरबियती सेशन था। अगर आप एक नाम दे दें ना गज़वे उहद को, गज़वे उहद सहाबा कराम का तरबियती सेशन था। एक तरबियती सेशन वो होता है, आपको एक क्लासरूम में बिठाया जाता है, प्रोजेक्टर खोल दिया जाता है, बड़ी बड़ी स्लाइड्स पे लिख लिख के दिखाया जाता है ये करें, ये टीम मैनेजमेंट, ये वो। इसका भी फ़ायदा होता है जब कभी ज़रूरत हो, लेकिन जो तरबियत मैदान में जाके होती है, प्रैक्टिकल चीज़ों में आप काम करते हैं, आप गलती करते हैं, फिर आपकी इसलाह होती है, आपसे गलती हो जाती है, जो लोग काम करते हुए सीखते हैं और इस नीयत से काम करते हैं, इस जज्बे के साथ काम करते हैं कि बस मैंने सीखना है, फिर अल्लाह ताला उनको चमका भी बहुत देता है। ऐसे ही सहाबा कराम चमके कि फिर आप देखते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लम की वफ़ात हुई, पीछे हम एक दिन सुन चुके हैं इस पे बात कि कितने फितने उठ सकते थे उस वक़्त, लेकिन सहाबा कराम एक ऐसा गिरोह तैयार हो चुके थे अल्लाह के नबी के पीछे कि फिर उन्होंने हर फितने के सुराख को भी बंद कर दिया, दीवार बन के कान बुनजान मरसूस की कैफियत में खड़े हो गए कि नहीं, हमारी ट्रेनिंग हुई है, अब हम नहीं हटेंगे इधर से। और अगर सहाबा कराम में रखने होते ना, तो यकीन करें कि आज इस्लाम जिस फॉर्म में हमें दिखता है ये ना होता। अल्लाह का नबी तो एक इंसान था ना, अल्लाह ने उनको ताकत दी, हिम्मत दी, वो कर गए। असल कारनामा जो अल्लाह के नबी का था, वो एक ऐसे गिरोह की तैयारी थी जिसने आने वाले दौर में उम्मत का बोझ उठाया। इसीलिए तो आपने कहा कि खैरु क़र्नु क़र्नी, सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर, सुमल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनका जो उनके उनको मिलेंगे, फिर उनका, फिर उनका। इसीलिए अब अगली आयतों में आप देखेंगे रुकू के एंड तक कुछ ऐसे लोगों की सिफात है जो हर दौर में नबियों के साथ काम करने वाले थे।